ओम शांति। तो आज हमारे इस सेल्फ प्रोग्रेस ग्रुप की टीम के बीच में बाबा के एक बहुत प्यारे अमूल्य रतन है, डॉक्टर रीना बहन जी। ये दिल्ली से है, ये एमडी पैथोलॉजिस्ट है वहाँ पर मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल में, और प्रोफेसर भी है। तो ये आज हमको एक्सपांड द कंफर्ट जोन पर, एक्सपांड योर कंफर्ट जोन पर कुछ बताएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज का जो टॉपिक है एक्सपैंडिंग योर कंफर्ट जोन, और जैसे सोफा भी बहुत कंफर्टेबल है, बैठ के अच्छा लग रहा है। और एक बहुत सुंदर कहावत है, एक व्यक्ति ने कहा है, उसका नाम है नील डोनाल्ड रैश। उसने बहुत अच्छी बुक्स भी लिखी हैं, कन्वर्सेशंस विद गॉड पार्ट 1-3। उसने कहा है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। जीवन की शुरुआत आपके सुविधा क्षेत्र के अंत में होती है। कंफर्ट जोन को हम सुविधा क्षेत्र भी कह सकते हैं, जिसका हिंदी लिटरल मीनिंग है। कुछ लोग कंफर्ट जोन को, एक्सपैंडिंग योर कंफर्ट जोन को ये भी कहते हैं स्ट्रेचिंग योर बलून, कि अपने गुब्बारे को जितना आप फुला सको। हम जानते हैं कि कंफर्ट जोन क्या होती है, क्या है ये सुविधा क्षेत्र। सुविधा क्षेत्र कोई स्थूल क्षेत्र नहीं है, कोई एरिया नहीं है, ये हमारी मनोस्थिति है, हमारा माइंडसेट है। ये एक ऐसी मनोस्थिति है जिसमें व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो अपनी तनाव मुक्त स्टेज में करता है। भारीपन नहीं होता, हल्केपन स्टेज में, कोई तनाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं। और उस मनोस्थिति में जब वो कार्य करता है, और जो उस कार्य का रिजल्ट होगा, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो भी बिल्कुल एवरेज। तो इस मनोस्थिति को लोगों ने कहा है कि सुविधा क्षेत्र। और अब हम सोच सकते हैं कि हमारी कंफर्ट जोन में फिर कौन कौन सी चीजें आती हैं। जो भी हम रोज रूटीन में करते हैं ना, डेली, जिसमें कोई भारीपन नहीं होता, वो सब कुछ हमारे कंफर्ट जोन में है। जैसे कि नाश्ता करना, जैसे कि स्नान करना, जैसे घूमना फिरना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंफर्ट जोन में है। स्नान करना, तो ये फिजिकल हो गई। लेकिन अगर हम देखें कि पहले से आपको देखें, अगर अपने जीवन को एक साल पहले देखें और आज देखें, कुछ ऐसी चीजें थी एक साल पहले जो मेरे लिए नेचुरल नहीं थी, लेकिन आज वो मेरे लिए नेचुरल है। तो सबकॉन्शियसली मैंने कुछ ऐसा किया कि पहले वाली चीज को मैंने आज नेचुरल बनाया, और जो सबकॉन्शियसली मैंने किया, मैंने अपने उस कंफर्ट जोन को बढ़ाया। तो इस कंफर्ट जोन को हम पहले जान लेते हैं कि कंफर्ट जोन क्या है। और उससे पहले एक बहुत सुंदर कहानी है, जिससे हमें और आइडिया होगा कि ये सुविधा क्षेत्र क्या है। एक राजा था, और उस राजा को एक गिफ्ट मिला। उसे दो बाज मिले गिफ्ट में, बाज पक्षी होते ना, फैल्कन्स। तो बाज किसी ने गिफ्ट दिए, और वो बहुत हाई ब्रीड के बाज थे, बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले। तो राजा उनको लेकर गया, और उसने अपने क्षेत्र में जाकर अपने ट्रेनर को दिया कि आप इनको ट्रेन करो, और ऐसा ट्रेन करो कि आसमान में ऊंची उड़ान भरे। 2 महीने बाद राजा ने क्या देखा कि एक बाज तो बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है, दूसरा बैठा है। तो उसने ट्रेनर से पूछा कि क्या दिक्कत है। तो उसने कहा, मैंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन मैं इसको उड़ना नहीं सिखा पाया। राजा अपने दरबार में नेक्स्ट टाइम अपने सारे लोगों को बुलाता है, जो उसके इंटेलिजेंट पीपल थे, कि आप सबको मैं कार्य देता हूं कि आप सबको इस बाज को ट्रेन करना है दूसरे वाले को, ताकि ऊंची उड़ान भर सके। सबने कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी बाज नहीं उड़ पाया। फिर राजा ने सोचा कुछ और करना पड़ेगा। उसने कहा कि इसके लिए शायद मुझे किसी लोकल पीपल को हायर करना पड़ेगा। उसने फिर अपने दरबार में अनाउंसमेंट की कि पूरे गांव में अनाउंसमेंट कर दो, और कोई भी आए, पूरे गांव में छोटे से छोटा व्यक्ति कोई भी आए, और जो इसको ट्रेन कर देगा उसको फिर मैं इनाम दूंगा। और जैसे ही फिर 24 घंटे के अंदर राजा देखता है अगले दिन की जो दूसरा वाला बाज है वो बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है। तो राजा आश्चर्यचकित होता है कि कैसे हुआ। तो उसने वजीर से पूछा, ट्रेनर से, कि किसने किया ये। तो उसने कहा, गांव से किसान आया था, उसने किया। तो उसने कहा, किसान को मेरे सामने पेश करो। तो किसान से राजा ने पूछा, आपने ऐसा क्या किया जो इतने महीनों से लोग नहीं कर पाए, और तुमने 24 घंटे में कर दिया। क्या किया, क्या जवाब दिया किसान ने, क्या जवाब दिया होगा? डंडा तो पहले वाले लोगों ने दिखा दिया, नहीं, कान में भी कुछ नहीं कहा, यस कि बाज जिस किसान ने कहा कि वो बाज जिस टहनी पर बैठा था, जिस पेड़ पर बैठा था, जो टहनी है, किसान ने जाकर उस टहनी को काट दिया। अब बाज के पास ऑप्शन ही नहीं था उड़ने के अलावा। तो लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। अब इस कहानी से हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो ये कि जब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो हम ग्रो करते हैं। और दूसरी बात एक और पता चलती है कि इस कहानी में उस बाज ने इमरजेंसी सिचुएशन में ग्रो किया, कि जब टहनी कट गई तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके पास एक पहला ऑप्शन था जो उसका साथी रोज उड़ता था, लेकिन उसको देखकर उसने नहीं सीखा। तो हम बच्चों को इमरजेंसी सिचुएशंस में ग्रो नहीं करना, हमें इलेक्टिवली, वॉलंटरली, स्व इच्छा से ग्रो करना है। और इसीलिए आज का टॉपिक है कि हमें आज की स्टेज में, जब हमारे पास कोई इमरजेंसी नहीं है, हमें अपने सुविधा क्षेत्र, इस मनोस्थिति को और इसके दायरे को और बड़ा करना है। सो दिस इज द एक्सपैंडिंग योर कम्फर्ट जोन। तो इसको हम जान सकते हैं कि कम्फर्ट जोन मतलब कि हमारी मनोस्थिति, जैसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल को मान सकते हैं कि हमारी मनोस्थिति है सुविधा क्षेत्र की। इस सर्कल के अंदर जो भी चीजें हैं वो हैं जो मैं नॉर्मली कर सकती हूँ, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें मैं आज बिल्कुल स्किलफुल नहीं हूं। तो इस सर्कल के अंदर है, ये है मेरी कम्फर्ट जोन, जो मैं आराम से कर सकती हूँ। और इस सर्कल के बाहर वो वाला क्षेत्र है, मेरी वो वाला माइंडसेट है, जिसमें वो ऐसी बहुत सारी रचनात्मक चीजें हैं जो मैं अपने जीवन में धारण कर सकती हूँ। और बहुत लोगों ने इसको कहा है लर्निंग जोन। इसको हम लर्निंग जोन भी कह सकते हैं, इसको हम स्ट्रेचिंग जोन भी कह सकते हैं, इसको हम करेज की जोन भी कह सकते हैं, कि ये है सीखने वाला क्षेत्र, हिम्मत दिखाने वाला क्षेत्र, अपने बलून को स्ट्रेच करने वाला क्षेत्र, और ये है हमारा कम्फर्ट जोन। तो अब हमारा जो टॉपिक है कि एक्सपैंड योर कंफर्ट जोन, इसको हम कैसे करें। अब ये है कि एक्सपैंड करना ही क्यों है, व्हाट इज द नीड। चल तो रहा है सब कुछ ठीक से, फॉर प्रोग्रेस, हमें नई चीजों को करना है। दुनिया में कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो 98% लोग हैं ना इस पूरे विश्व के, उनका जो माइंडसेट है वो यहां बीच वाले सर्कल में होता है, कंफर्ट जोन में, और सिर्फ 2% लोगों का माइंडसेट बाहर वाले सर्कल में होता है। और अब बाबा क्या करता है आके, हम सब बाबा के बच्चे ना संघ में, बाबा आकर हमारा माइंडसेट इस 98% लोगों से हटा के 2% पे लेके जाता है कि बच्चे आपको अब इससे बाहर नहीं जाना है, इस अपने सर्कल को बड़ा करना है। तो अगर हम वॉलंटरी एफर्ट करेंगे, अगर स्व इच्छा करेंगे, और फिर हम कुछ एफर्ट्स लगाएंगे, इंटेंस एफर्ट्स लगाएंगे, सपोज एक साल बाद क्या होगा, एक साल बाद जो हमारा कंफर्ट जोन का दायरा है वो पहले से बड़ा हो गया, और जो चीजें इसके बाहर थी अब वो चीजें इसके अंदर आ गई, और हमारा लर्निंग जोन का दायरा और छोटा हो गया। तो जो बाहर का सर्कल है ना, उसकी बाउंड्रीज, जैसे कि हमारे मन का, हमारे ब्रेन का मैक्सिमम पोटेंशियल, तो अभी प्रेजेंट पोटेंशियल और मैक्सिमम पोटेंशियल में अंतर है, लेकिन एफर्ट लगाएंगे, अपने सुविधा क्षेत्र को बड़ा करेंगे, दायरा बड़ा करेंगे, तो हम अपने ब्रेन के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं। अब एक और चीज है कि अगर बाय चांस हम नहीं बढ़ाते तो क्या होगा, जो है जहां वही रहेंगे, यही है। जैसे एक्सपैंडिंग योर कंफर्ट जोन को ये भी कहते हैं ना स्ट्रेचिंग योर बलून, कि अपने गुब्बारे में हवा भरो, मतलब कि उसमें एफर्ट डालो। अगर हमने एक गैस का गुब्बारा लिया है, हाइड्रोजन भरते हैं ना उसमें, जो हवा में उड़ जाता है, आज आपने उसमें भरा और यहां छोड़ देंगे तो छत पे चिपक जाएगा वो, 24 घंटे बाद आके देखेंगे तो क्या होगा, चिपका रहेगा, छोटा हो जाएगा। तो मतलब अगर हम अपनी कंफर्ट जोन में, अगर अपनी कंफर्ट जोन में एफर्ट नहीं लगाएंगे, इसमें तो एफर्ट लगाया और हमारा कंफर्ट जोन बढ़ा, और अगर हम उसको जहां है वहीं छोड़ेंगे और एक साल बाद देखेंगे, तो आज जो हमारे कंफर्ट जोन का दायरा है वह एक साल बाद इससे भी छोटा हो जाएगा। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। हम ऐसा ना समझे कि टेकन फॉर ग्रांटेड, कि जो चीजें मुझे आ जाती हैं मैं हमेशा उसमें निपुण रहूंगी। ड्राइविंग ऐसी चीज है कि अगर व्यक्ति सीख ले तो बिल्कुल 10 काम भी कर सकता है, 10 चीजें सोच सकता है ड्राइविंग के वक्त, लेकिन अगर ड्राइविंग भी एक साल नहीं की तो रोड पे आज जो चैलेंजेस मैं डील कर सकती हूँ, एक साल बाद वो वाले चैलेंजेस ड्राइविंग करते वक्त मैं डील नहीं कर सकती. अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने आप को पुश तो करना है, एक्सपैंड करना है अपनी कंफर्ट जोन को, लेकिन किस लेवल तक? मैक्सिमम जो बाउंड्री कौन सी है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि उस जो बलून है ना, उसमें हवा इतनी नहीं भरनी कि भरते जाएं तो फिर वो फट जाए. तो फटने का मतलब ये है कि कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना है, लर्निंग जोन तक लेके जाएंगे. लेकिन इस जोन के बाहर भी कुछ लोगों ने कहा है कि वहां पे एक डेंजर जोन आती है. उस डेंजर जोन को हम पैनिक जोन भी कह सकते हैं. ब्राह्मण आत्माओं के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने आप को पुश तो करना है, हमें अपने माइंड सेट को बढ़ाना तो है, लेकिन इतना पुश ना कर दें कि हम एंड में जाके कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं. और ऐसा बहुत बार होता है कि अपने आप को वाइजनेस के साथ पुष्ट करना है, मजे के साथ पुष्ट करना है, एंथुजियाज्म के साथ करना है, रमणीकता के साथ करना है कि जो भी करें मजे में करें. लोगों ने कहा है कि अपनी कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना चाहिए, वो डेंजरस है, उसको बस बढ़ाओ. जो करना उसके दायरे में रहकर करो, लेकिन बस उसकी बाउंड्रीज को बढ़ाते जाओ. तो इसके अंदर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, आरामदायक रहेंगे, एकदम बाहर जाएंगे तो पैनिक जोन, वो डेंजर जोन है. अब बाबा ने आके एक और चीज की. ये तो हम जो सब लोग है ना सोच सकते हैं, दिस इज विद इन अवर रीच कि कंफर्ट जोन को बढ़ाना है, नई चीजें आ जाएंगी. अगर हम आज से एक साल बाद देखें, सपोज ये देखते हैं ना, हम बीकेज हैं, जो ये वाला है, जो कुछ हमारे लर्निंग जोन में चीजें थी, हमने एफर्ट किया, कुछ टाइम बाद वो हमारे कंफर्ट जोन में आ गया, हमारे सुविधा क्षेत्र में आ गया. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुरली सुनना, पहले तो आदत नहीं थी ना, शुरू के एक साल में मेहनत लगी, लेकिन हमारे लिए अब वो नेचुरल है. मेडिटेशन, दूसरों की हेल्प करना, कंपैशन पहले नहीं था लेकिन आज वो नेचुरल है. लेकिन बाबा एक चीज और करता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे. हम सिर्फ इसमें ये बातें सोच रहे हैं कि हमें नई चीजों को धारण करना है, अपने ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ाना है. हमारे कंफर्ट जोन में पहले कुछ ऐसी चीजें भी थी जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, जैसे कि पांच विकार, जैसे कि बुरी आदतें. तो बाबा जब आता है, हमारा माइंडसेट तो बदलता ही है, 98% से 2% माइंडसेट में लेके जाता है. लेकिन बाबा हमारे पुराने कंफर्ट जोन में जो वाइसेस हैं, विकार हैं, बुरी आदतें हैं, बाबा उनको वैनिश भी करता है. तो ही ट्रांसफॉर्म्स अस इन अ डबल वे, कि पुरानी चीजों को भी खत्म किया और नई चीजों को धारण करने का रास्ता भी बाबा ने बताया. अब हम आगे देखेंगे कि इस कंफर्ट जोन को हमें बढ़ाना क्यों है. हमने कहा ना, कंफर्ट जोन एक क्षेत्र नहीं है बल्कि मनोस्थिति है. तो मन की बात कर रहे हैं ना, तो इस मन को समझाना कैसे, इस मन को और कन्विंस करना पड़ेगा कि हमें इस कंफर्ट जोन के सुविधा क्षेत्र के दायरे को बढ़ाना क्यों है. तो क्या रीजन हो सकते हैं? जो कोई भी हम नई चीज सीखते हैं उसमें तीन चीजें हैं कि व्हाट, व्हाई और हाउ. सुविधा क्षेत्र क्या है, क्यों बढ़ाना है और कैसे. तो क्यों में क्या कारण है, क्यों बढ़ाना है. अभी हमने कुछ डिस्कस किया, नई चीजें आएंगी. अगर हम अपने सुविधा क्षेत्र के दायरे को बढ़ाएंगे तो हम अपने ब्रेन के पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं. और नहीं बढ़ाएंगे तो बोर्डम हो जाएगी, वो उसका नुकसान है. जैसे हमने डिस्कस किया था कि नहीं बढ़ाएंगे तो समय के साथ वो छोटा होता जाएगा. लेकिन अभी ये डिस्कस करना है, बढ़ाएंगे तो फायदे क्या क्या होने वाले हैं. पुरुषार्थ में नवीनता आएगी. तो एक पॉइंट है कि क्रिएटिविटी, अगर हमें अपने जीवन में क्रिएटिविटी लेकर आनी है तो हमें अपने कंफर्ट जोन के दायरे को बढ़ाना पड़ेगा. इस जीवन में जो लोग अपने एक नॉर्मल मोनोटोनस लाइफस्टाइल से जी रहे हैं, वो कभी भी कोई रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते. अगर वही ऑफिस जाना, 9 से 5 की नौकरी, वही एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ नयानेस, कुछ क्रिएटिविटी नहीं आएगी. क्रिएटिविटी तब आएगी जब थोड़ा सा उससे आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे. तो एक्सपैंडिंग, अपने सुविधा क्षेत्र को बड़ा करेंगे तो क्रिएटिविटी आएगी. दूसरा, नई आदतें आएंगी. जैसे हमने भी देखा ना कि बीकेएस का हमारा एक साल पहले का दायरा देखे और अभी का देखे तो कितनी सारी नई चीजें आ गई. तो किसी नई आदत को लाना, वो एक एक बहुत बड़ा फायदा है हमारी कंफर्ट जोन में. और क्या फायदे हैं? हमारा संस्कार परिवर्तन, एक नई आदत आएगी, एक नया स्किल्स आएगा, और वो स्किल जब लॉन्ग टाइम में उसको यूज करेंगे तो फिर हमारा वो संस्कार बन जाएगा. जैसे कि ये जो कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करते हैं, इसका एक प्रोसेस भी है. जैसे आपने ये हमारी लर्निंग जोन है और यहाँ पे एक पॉइंट रखिए कि ये चीज मुझे अपने अंदर धारण करनी है। अब आज पहला दिन है, आपने कोशिश करी, पहले दिन कोशिश करेंगे तो कितना रेजिस्टेंस फील होगा, मुश्किल होगी ना, कितनी डिफिकल्टी फेस करेंगे। सपोज हमने आज इतनी डिफिकल्टी फेस की, सेकेंड टाइम फिर कोशिश करते हैं तो दूसरे दिन डिफिकल्टी कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तीसरे दिन, और फिर ऐसे हम सपोज 10 बार करेंगे तो वो डिफिकल्टी, वो रेजिस्टेंस, वो भारीपन धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये जो नई आदत में डालने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ दिनों बाद ये मेरी नेचुरल हैबिट बन जाएगी। इस नेचुरल हैबिट को भी अगर और कई साल किया तो फिर मेरा ये संस्कार बन जाएगा, तो तब बाद में आके मेरे कंफर्ट जोन में आएगा। टेक्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कितना समय लगेगा, बट समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर संस्कार परिवर्तन करना है, इस दायरे को बढ़ाना है, इस तो ये एफर्ट एक दिन का नहीं है, ये एफर्ट कंसिस्टेंट परसिस्टेंट रोज का एफर्ट करना पड़ेगा। वो चीज रोज करनी पड़ेगी तब हम उसको कर सकते हैं। जैसे अभी आजकल है कि आजकल मुझे वॉक कराई जा रही है, मतलब वॉक करना मेरे लर्निंग जोन में है, मेरे कंफर्ट जोन में नहीं है। मुझे हिना बहन रोज वॉक करने के लेके जाती है, अभी 3-4 दिन हो गए, पहले दिन ज्यादा डिफिकल्टी, दूसरे दिन कम। अगर बाद में जाके मैं रोज इसकी प्रैक्टिस करूं तो शायद फिर 1 साल में जाके वो यहां पे आएगा, लेकिन अभी मेरे लर्निंग जोन में है। अभी मॉर्निंग वॉक करना आप बहुत सारे लोगों के कंफर्ट जोन में है, लेकिन ये मेरे लर्निंग जोन में है। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे लर्निंग जोन में क्या है, मेरे कंफर्ट जोन में क्या है। और कौन कौन से फायदे हैं, हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है, नई स्किल्स आएंगी, क्रिएटिविटी होगी, संस्कार परिवर्तन, नई हैबिट बनेगी, और क्या फायदे हैं, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, बिजी रहेंगे, अब इतना कुछ कर रहे हैं बिजी हैं, हमारी स्थिति ऊपर जाएगी, वही कि हमारी जो पोटेंशियल है, ब्रेन का पोटेंशियल है, हमारी जो मन की शक्ति है उसको स्ट्रेच कर दिया तो फिर वो बढ़ जाएगी। और क्या फायदे हैं, अच्छा, और सेल्फ में क्या फायदे हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अडैप्टेबिलिटी। जब हम अपने सुविधा क्षेत्र को बड़ा करते हैं तो जितनी भी सिचुएशंस आती हैं, अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड, उससे अडैप्ट करने की, उससे एडजस्ट करने की ताकत हमारी बढ़ जाएगी। एक और आदत, एक और बेनिफिट है, ये है अडैप्टेबिलिटी। इस दुनिया में जितने भी 2% माइंडसेट वाले लोग हैं, इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सिर्फ उन 2% माइंडसेट वाले लोगों ने किए हैं। 98% माइंडसेट वाले जो लोग हैं वो सिर्फ एक मोनोटोनस जीवन जीते हैं और चले जाते हैं। जो कुछ चेंजेस किसी ने किए हैं, कुछ न्यू इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, साइंटिफिक वर्ल्ड में या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो ये वाले माइंडसेट वाले लोगों ने किया है। तो फिर अगर हमें कुछ आविष्कार करने हैं, जैसे भाई साहब बता रहे थे, नवीनता लेकर आनी है, स्पिरिचुअल डिस्कवरीज करनी है, तो हमें अपने सुविधा क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा। तो डिस्कवरीज, और क्या फायदे हैं, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। और बेनिफिट्स, एक और कहावत है, जैसे कहावत थी ना, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन, एक और कहावत है कि मिरेकल्स हैपन एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। कि जो मेरेकल्स होते हैं जीवन में, ब्राह्मण बच्चों की कहानियां सुनेंगे, बहुत मेरेकल्स की हिस्ट्री है, वो सारे हमारे कंफर्ट जोन के एंड में होते हैं। और क्या फायदे हैं, एंड नहीं, दैट्स व्हाट आई एम रिपीटिंग, आई एम, उन्होंने कह दिया एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन, उनका मतलब है कि इसको स्ट्रेच करना, स्ट्रेच करते करते इस गोले को बड़ा करना, इसके बाहर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, यस, बट वी आर इंक्रीजिंग द एरिया, वी आर इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटीज। जैसे कि मेरे कंफर्ट जोन में आज 2 चीजें मैं कर सकती हूं, लेकिन और 2 चीजें यहां है, 1 साल का एफर्ट लगाया, अब वो 2 चीजें मेरा संस्कार बन गई, मेरी स्किल बन गई, आ गया अंदर, तो फिर मैंने अपने कंफर्ट जोन को बढ़ा कर लिया। और फिर जब हम एक्सपैंड करेंगे तो पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। आज सेवा में अगर मैं 2 चीजें कर सकती हूँ और कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करूंगी तो कल जाके मैं 4 चीजें कर सकती हूँ। ऐसे बाबा का बच्चा बनने के बाद सबने अनुभव किया, सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बाबा का बच्चा बनने के बाद सबके अंदर नई नई स्किल्स आती हैं, नई नई कलाएं आती हैं। वो कैसे आती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता, बाबा हमें ऐसा करा रहा है और फिर जैसा वो कहता है हम करते हैं, हम सबकॉन्शियसली इस कंफर्ट जोन को, इस सुविधा क्षेत्र को बढ़ाते जाते हैं। अब नेक्स्ट चीज इंपॉर्टेंट है कि इसको करना कैसे है। अभी मन कन्विंस हो गया, कि बहुत फायदे हैं इसको बढ़ा के। अब इससे हमें कराना है, सब कुछ किससे करना है, मन से, क्योंकि हमारी मनोस्थिति है। तो पहला स्टेप क्या है, अपने सुविधा क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने का द फर्स्ट सिंगल मोस्ट स्टेप, दृढ़ता और अपने आप को देखना। सबसे पहले ये तो पता हो कि करना क्या है, एक्सपेंडिचर भी बाद में, बट फर्स्ट वी नीड टू डू व्हाट वी नीड टू डू। इसलिए जो पहला स्टेप है कि इसको बनाना, इसमें लिखना और इसमें लिखना कि क्या करना है, तो फर्स्ट इज राइटिंग इट डाउन। हमारे लर्निंग जोन में आज की डेट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे लर्निंग जोन में है, तो फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू राइट इट डाउन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। एंड दैट कुड बी अवर होमवर्क फॉर द डे, कि हम जाएं और फिर बनाएं और बाहर वाले गोले में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें लानी है। पहले एक गोल स्थापित करना पड़ेगा। अब इस लर्निंग जोन में एक इम्पॉर्टेंट चीज रखनी है कि इसमें एज बीके हमें यह नहीं लिखना कि मुझे संपूर्ण बनना है, ऐसा वाला गोल नहीं लिखना है इसके अंदर। कौन से वाला लिखना है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। जैसे कहा ना, आपके लिए चाइल्ड्स प्ले है मॉर्निंग वॉक करना, मैं लिखूंगी मॉर्निंग वॉक, मेरे लिए है, लेकिन ये फिर भी अचीवेबल गोल है। तो मेन बात यह है कि इस लर्निंग जोन में जो हमें लिखने हैं अचीवेबल स्मॉल गोल्स लिखने हैं, छोटे लक्ष्य, बहुत छोटे छोटे टारगेट्स लिखने हैं, शॉर्ट टारगेट्स लिखने हैं, और अपने बी के लाइफस्टाइल को देख के रखना है कि कौन कौन से गोल लिखने हैं। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि अब लिख लिया, क्लियर हो गए, छोटे छोटे गोल्स लिख लिए, लिस्ट बन गई 10 की, 5 की, 4 की। दूसरा स्टेप क्या होगा, कैसे डिस्कस कर रहे हैं, अब इस गोल को अचीव कैसे करना है। तो सेकेंड स्टेप हमारा होगा हाउ में, कि हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, स्मॉल स्टेप्स, गोल भी छोटा रखना है, स्टेप्स भी छोटे लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अमृत वेला उठना है किसी को 3 बजे, आज वो 6 बजे उठता है, गोल लिख दिया कि 6 बजे उठता हूं, मुझे 3 बजे उठना है, ये लर्निंग जोन में लिखा। अब स्टेप क्या होगा उसका फर्स्ट डे, एग्जैक्टली, कि अगर कल मैं, ये मेरा स्टेप है कि कल मैं उठ जाऊं 3 बजे, नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर मैं ये रखूं कि आज मैं 6 बजे की बजाय कल उठूंगी 5:55 पे, तो मुझे रात को सोते हुए पहले से ही पता है कि ये डेफिनेटली तो अचीव हो ही चुका है। 5 मिनट पहले उठना कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड डे 5:50, तीसरे दिन 5:45, ऐसे 12 दिन में 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। फिर 24 दिन में, दृढ़ता अगर लाएंगे, और डेफिनेटली वो असर दिखा सकती है, एक दिन असर दिखा देगी, अगले दिन 4 बजे उठ जाएंगे, दूसरे दिन उठ जाएंगे, तीसरे दिन उठ जाएंगे, बहुत स्ट्रेच कर लिया, चौथे दिन दृढ़ता थोड़ी कम होगी, फिर अगले दिन 8 बजे उठेंगे। ये सारी चीजें क्वांटिफाइबल नहीं है। तो इसीलिए हमें स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, और वो स्मॉल स्टेप्स का भी तीसरा जो तरीका आएगा, कि जैसे 12 दिन में 1 घंटे का डिफरेंस हुआ, 24 दिन में 2 घंटे का डिफरेंस, और फिर 36 डेज में 3 घंटे का डिफरेंस हुआ, तो मतलब एक महीने अगर कंसिस्टेंटली उस इफेक्ट को करेंगे तो हम अपने इस 3 घंटे अपने पहले उठने के दायरे को अचीव कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप इज स्मॉल स्टेप्स के बाद थर्ड है कि उसको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के साथ करना है। दुनिया के लोग कहते हैं कि कुछ इसमें ना 30-day ट्रायल्स होते हैं, कुछ लोग कहते हैं 100-day ट्रायल्स होते हैं, दिस योर सेल्फ मेड ट्रायल्स। आप अपने डेज लिख सकते हैं, जैसे सूरज भाई कहते हैं कि कुछ नया करना 21 दिन का सामान रखो, सो दैट इज योर सेल्फ मेड थिंग, बट यू हैव टू कीप इट फॉर स्पेसिफिक डेज एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम पढ़ते थे अपनी पढ़ाई MBBS की, तो कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, पूरे साल नहीं पढ़ना, कुछ होते हैं ऐसे लोग पूरे साल नहीं पढ़ना, अब 2 दिन पढ़ के तो होने से रहा कुछ भी, तो हमने बनाया था, मुझे याद आया कि वहां रूल बना हुआ था कि पेपर के 100 दिन पहले पढ़ना शुरू करते थे, 100 डेज नहीं, MBBS के लिए तो चलेगा ना, इतना चाहिए अगर फाइनल एग्जाम, तो 100 डेज पहले प्लान बनाते थे कि 3 महीने का टाइम टेबल है और बाकी सब छोड़ के पढ़ाई में लगना है। तो तीसरा स्टेप मतलब कितने दिन का ट्रायल हम कर सकते हैं, 30 डेज, 100 डेज, एनी डेज, कि जिसमें वो गोल के हिसाब से फिर डेज डिसाइड होंगे। कुछ गोल हमारे 30 दिन के ट्रायल से अचीव हो जाएंगे, कुछ गोल हमें 100 डेज लगेंगे, किसी में हो सकता है 6 महीने भी लग जाए। अब किसी को वजन कम करना 20 किलो, तो फिर उसे 2 साल लगेंगे ना, दैट्स व्हाट, उसे 2 साल लगेंगे. अगला स्टेप कौन सा है? अगला स्टेप जिससे हम अपनी कंफर्ट जोन को बढ़ा सके, वो है एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस. अब इस क्लास में आना और यहाँ पे ऑडियंस बन के क्लास सुनना बहुत अच्छा कंफर्ट जोन है. और जब होमवर्क की अनाउंसमेंट हो, वो मैं आने वाली उस पर. और जब यहाँ बैठे फिर होमवर्क अनाउंस होता है कि आपको क्लास लेनी है और मना भी नहीं कर सकते, फिर आप हाँ कर देते हो और फिर आप आके क्लास लेते हो, तो ये हो गई लर्निंग जोन. लेकिन अगर ऐसी क्लास आपको रोज रोज लेनी पड़े, वो होमवर्क रोज मिल जाए, फिर आ जाएंगे हम डेंजर जोन में, क्योंकि वो फिर बहुत स्ट्रेचिंग हो जाएगी. एक ले ली ठीक है, एक तो फिर भी हमारे दायरे के अंदर है. अगर हमें 10 लेनी पड़े और लगातार ही लेनी पड़े, तो फिर देन इट्स अ डेंजर जोन. डिपेंड्स इंडिविजुअल वेरिएशन. तो एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस, तो जितना हो सके, जैसे बाबा कहते हैं ना सेवा में हाजी करो, वो भी तो एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस है कि बाबा ने सेवा दी, स्किल आज मेरे अंदर नहीं है, लेकिन हाजी का पाठ किया, कल स्किल आ जाएगी, तो फिर मेरे वो कंफर्ट जोन में आ जाएगा. नेक्स्ट जो तरीका है अपने कंफर्ट जोन सुविधा क्षेत्र को बढ़ाने का, वो है एक पर्टिकुलर इमोशन या कोई क्लिक मिलना. ये जो तरीके ना छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, बेबी स्टेप्स. कभी कभी कुछ लोगों को जीवन में कोई एक ऐसा क्लिक मिल जाता है कि वो फिर बड़ी छलांग लगाते हैं, फिर प्लानिंग नहीं करते कि बस किया तो हो गया. जैसे बाबा के बच्चे बने, अल्कोहल है, शराब पीने की आदत है, फिर वो एक रात के अंदर आदत खत्म. क्यों? क्योंकि जब वो बाबा का बच्चा बना, डेफिनेटली उसको कोई ऐसा क्लिक मिला, कोई ऐसी बात टच हुई जिससे उस आत्मा में उस दिन दृढ़ता भी आ गई, सब कुछ भी आ गया, और डेफिनेटली वो अपने लर्निंग जोन में पहुंच गया. उसके कंफर्ट जोन के अंदर वो अल्कोहल फ्री लाइफस्टाइल आ गया. तो हमें उस ऐसे क्लिक को या तो ढूंढना है, अपने आप मिल जाए. नॉर्मली क्लिक ढूंढ नहीं सकते, वो बस हमें टच करते हैं, अपने आप टच कर जाते हैं. इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी है. एक व्यक्ति है मतलब ही स्टिल देयर, हिज नेम इज जॉन वुड, मिस्टर जॉन वुड्स. वो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में काम करता था, बहुत अच्छी कंपनी, बहुत पैसे मिलते थे, 9 से 5 की नौकरी, सब कुछ ठीक बाहर से देखा जाए तो. लेकिन उस चीज से वो खुश नहीं था. उसके मन में इच्छा थी, मुझे कुछ नया करना है, लेकिन पता नहीं था करना क्या है. कोई गोल नहीं बनाया था लर्निंग जोन का, उसे ज्ञान भी नहीं था. फिर छुट्टियां हुई तो फिर इंडिया में आया, हिमालयाज रेंज में, वहां वेकेशन के लिए आया छुट्टियां मनाने. और हिमालयाज में एक रिमोट विलेज में गया. उस रिमोट विलेज का नाम शायद ये है ब्रह्मानंदा, चेक कर लेंगे. तो जो वो जो विलेज है ना, वो इतना रिमोट जगह पे है कि 2 दिन की जर्नी लगती है उस गांव तक पहुंचने में, इतने इंटीरियर में है हिमालयाज में. उसने उस गांव में जाके देखा कि 450 बच्चे उस गांव में पढ़ते थे. और एक चीज उसने क्या देखी कि उस गांव के अंदर, उस स्कूल के अंदर बच्चों के पास किताबें नहीं थी. ये देखकर वो हैरान हो गए, ही वॉज मूव्ड कि बच्चे बिना बुक्स के पढ़ रहे. उसने टीचर से पूछा कि आपके पास बुक्स नहीं, आप कैसे पढ़ते हो, आप बुक्स क्यों नहीं मंगाते? टीचर ने जवाब दिया, वी डोंट हैव मनी एंड वी डोंट हैव एक्सेस. ना हमारे पास पैसा है और ना हमारे पास एक्सेस है बुक्स लाने का. फिर उस टीचर ने एक लाइन कही जो उस व्यक्ति के लिए क्लिक हो गई. उस टीचर ने कहा कि परहैप्स सर यू विल समडे कम विद द बुक्स, कि शायद सर आप एक दिन वापस आएंगे किताबें लेकर. वो जॉन वुड के लिए ऐसा क्लिक बन गया. वापस आया, उसने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी नौकरी छोड़ दी. जॉन वुड ऐसा कॉरपोरेट पर्सन था, बिल्कुल ट्रेन्ड, उसके अंदर कोई भी स्किल्स नहीं थे. उसने अपनी नौकरी छोड़ी, एक नया प्रोग्राम बनाया और आज वो बुक के रूप में भी पब्लिश है, क्रिएटिंग रूम टू रीड, पढ़ने वाला कमरा बनाना. तो उसने जो प्रोग्राम बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसमें क्या किया, इसमें उसने लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की. तो 91 की बात है जब वो हिमालयाज में गया था, 99 में उसने अपनी पहली लाइब्रेरी खोली. ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जब ऐसा है उसने फंड रेज करने पड़े. पहली लाइब्रेरी उसने उसी गांव में जाकर खोली और आज 2018 है, 15 तक उसने 2015 तक पूरे विश्व में हर कंट्री में 15,000 ऐसी लाइब्रेरीज वो खोल चुका है. और वो ये कहता है कि इस पूरे प्रोसीजर में 91 से 99 तक उस 8 साल में मुझे बहुत सारे विघ्नों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुझे फंड रेज करना नहीं आता था, मैं सेल्स पर्सन नहीं था, मैं लोगों से जाके पैसे नहीं मांग सकता था, लेकिन जितनी भी डिफिकल्टीज आई उन सबको इसने अचीव किया। वो कुछ भी उसके कम्फर्ट जोन में बिल्कुल भी नहीं था, वो उसकी पर्सनैलिटी का ही हिस्सा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा क्लिक मिल गया और इसने इतना बड़ा कार्य कर दिया। एंड अब उसको गूगल इन्वाइट करता है, माइक्रोसॉफ्ट, ही गोज एंड गिव्स इंस्पिरेशनल टॉक्स। सो दिस इज स्टोरी ऑफ जॉन वुड। हम बाबा के बच्चों को कोई ऐसा क्लिक मिल जाता है तो हम फिर बहुत बड़ा कार्य कर जाते हैं। अब इस क्लिक को ढूंढे कैसे? देयर इज ओनली वन सोर्स, देयर इज ओनली वन सोर्स, सिर्फ मुरलीज, राइट? मुरली, हमारे लिए मुरलीज ही ऐसी जगह है, ऐसा सोर्स है कि हम पढ़ें और फिर मुरली का कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं क्लिक कर सकता है। मुरली इज अवर सोर्स। अगला जो तरीका है इसकी हम कंफर्ट जोन को बढ़ा सकते हैं, और कौन सा है? अब तक हमने क्या क्या सीखा? कि सबसे पहले लिखना है, छोटे स्टेप्स लेने हैं, एक कुछ स्पेसिफिक डेज का ट्रायल करना है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, और एक पर्टिकुलर इमोशन या क्लिक। ये सब कुछ जो भी था ये भी हमारे दायरे के अंदर था। अब कुछ ऐसी चीजें बाबा ने बताई है कि जो हमारे इस कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करने में रियली हमें हेल्प कर सकती है, क्योंकि बाबा जो सोचेगा वो तो अलग ही सोचेगा ना। बाबा ने एक मुरली में कहा है, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, कि जैसे हमें अब हमें बीकेज के लाइफस्टाइल में हमारे लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है? पुरुषार्थ, अवर एफर्ट। बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ क्या करना है? तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा, बच्चे अगर आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझोगे, कुछ समझते ना इंटेलिजेंट, और होते भी इंटेलिजेंट होते हैं, तो अगर आप अपने को इंटेलिजेंट समझोगे तो आपका पुरुषार्थ कभी भी तीव्र नहीं हो सकता। अगर अपने आपको सिंपल समझोगे, भोले समझोगे, बुद्धू समझोगे, तो आपका पुरुषार्थ तीव्र होगा। या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हमेशा हमें अपने आप को न्यू कमर समझना चाहिए, क्योंकि जब हम लंबे समय से ज्ञान में होते हैं ना, 15-20 साल से, तो वो मोनोटोनस वाली चीज आ जाती है। तो हमें अपने आप को न्यू कमर समझे, और कोई भी प्रश्न अगर दिमाग में आए ना, ये मत सोचे कि मैं 20 साल का हूं तो मैं एक डाउट कैसे पूछूं, ये तो कोई फर्स्ट डे आने वाला पूछेगा। वी शुड आस्क अवर क्वेश्चंस। तो हमें अपने आप को न्यू कमर समझना है, बुद्धू सिंपल बच्चा जो अभी भी बहुत कुछ सीख रहा है, तो हम अपने पुरुषार्थ में तीव्रता ला सकते हैं। बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा है। बाबा ने यह भी कहा है कि आप ये मत बोलो कि मैंने ये अचीव कर लिया या मुझे करना है, हम ऐसा बन रहे हैं, वी आर ऑन द प्रोसेस, इस प्रोसेस को कर रहे हैं। क्योंकि अगर बन रहे हैं तो फिर लर्निंग वाला माइंडसेट रहेगा, बनना है तो माइंडसेट नहीं आ सकता, बन गए फिर तो खत्म ही, लेकिन बन रहे हैं मतलब डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। बाबा ने और कौन सी बात बताई? एक और इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई है, अपने सुविधा क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने की, जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो हमारे दिमाग में नहीं आएगी। लोग ऐसा कहते हैं, बाबा ने इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया, कि अगर कुछ भी अचीव करना है ना, तो जो उस लर्निंग जोन में है उसको अचीव करने के बाद जो आपको मिलेगा, जो रिवॉर्डिंग पॉइंट है, उसको याद करो। जैसे कि पढ़ते थे, अभी हम मजाक की बात है कि जब एमडी की तैयारी, एमडी का जब एग्जाम था, तैयारी नहीं, जब एग्जाम था, तो सब एक माइंडसेट के साथ पढ़ते थे कि ये जीवन का आखिरी पेपर है, इसके बाद कोई पेपर नहीं देना, तो इसलिए पढ़ना है तो पढ़ लो, ये आखिरी पेपर है जीवन का, लौकिक रीति से ये एक रिवॉर्डिंग पॉइंट है। तो बाबा ने हमें क्या बताया, हमारा रिवॉर्डिंग पॉइंट क्या है? हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये रियलाइजेशन है, लेकिन हमारा रिवॉर्डिंग पॉइंट क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग, बाबा ने कहा कि अपना फ्यूचर देखो, जो आपने भविष्य के नजारे हैं उनको देखो, उनको बार बार देखो, उनको और गहरी रीति से देखो, उसमें क्यूरियोसिटी लेकर आओ बहुत ज्यादा, कि सत्युग में कैसे होगे, कैसी ड्रेस। बाबा ने तो बहुत डिटेल्स दी हैं, ड्रेस और भी बहुत सारी चीजें हैं, खाना कैसा वहां पे, खाना अच्छा ही होगा। तो बाबा ने कहा कि अपने भविष्य को देखना है। बाबा ने एक और चीज कही कि बाबा जब हम बच्चों को देखते हैं तो हमेशा तीन टाइम फ्रेम में देखते हैं। तीन टाइम फ्रेम कौन से? कि बाबा बच्चे को देखेगा तो पास्ट भी, इस बच्चे का पास्ट भी अभी देख रहा है, प्रेजेंट भी देख रहा है, और इस बच्चे का भविष्य भी बाबा अभी देख रहा है। बाबा अपने हर बच्चे को त्रिकालदर्शी स्टेज में देखता है। तो बाबा कहता है कि तुम अपने आप को दो टाइम फ्रेम में देखते हो, सिर्फ अपना पास्ट देखते हो और प्रेजेंट देखते हो। तो बाबा की तरह हमें अपने आप को तीन टाइम फ्रेम में देखना है, त्रिकालदर्शी स्टेज, जिसमें फ्यूचर को ऐड करना पड़ेगा। जो अचीव करना है, जो फर्स्ट स्टेप पे लर्निंग जोन में लिखा है, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वही आएगा कि वी हैव टू थिंक वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, तो उस फीलिंग में लेकर आना है, तो फिर एफर्ट उस हिसाब से बन जाएंगे। तो नेक्स्ट जो तरीका है, अपने भविष्य को देखना। और सबसे आखिरी चीज, अब ये सबके लिए क्लिक हो सकती है क्योंकि बाबा की बात है तो क्लिक होगी। बाबा ने ये भी अव्यक्त वाणी में कहा है, शायद ये 69 की है, मुझे याद नहीं। तो इसमें बाबा ने कहा है कि आपका जो पुरुषार्थ है उसमें तृप्ति नहीं होनी चाहिए, पुरुषार्थ में तृप्ति नहीं, संतुष्टता पुरुषार्थ में मत लाओ कि बाबा से ये मिला मैं बहुत संतुष्ट आत्मा हूं। तृप्ति लानी है कहीं और लाओ, लेकिन पुरुषार्थ में तृप्ति नहीं, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए, पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए, रेस्टलेसनेस होनी चाहिए, हलचल होनी चाहिए कि अभी हमें ये करना है। तो अपने पुरुषार्थ में तड़प लेकर आओ, तड़प लेकर आएंगे तो फिर जो हम बात कर रहे हैं कि सुविधा क्षेत्र को बढ़ाना, तो फिर वो बहुत आसान हो जाएगा, फिर इस पर ध्यान नहीं जाएगा, सबकॉन्शियसली बढ़ता ही जाएगा। अब बाबा ने इस पुरुषार्थ में तड़प लाने में एग्जाम्पल किसका दिया, किसका दिया होगा, बांधेलियों का एग्जाम्पल दिया बाबा ने, कि जो बांधेलियां होती है उनके अंदर इतनी तड़प होती है, इतनी तड़प होती है, और फिर लोग उनको अपोज भी करते हैं, फिर वो तड़प बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कि जब अपोज होता है तो तड़प बढ़ती है, तो फिर पुरुषार्थ तेज होता है। फिर बाबा ने कहा कि कुछ फिर वो स्टेज भी है जिनको कोई विघ्न नहीं है, वो सबसे ढीले हैं। तो इसीलिए अगर विघ्न नहीं है, बांधेलियां नहीं है, फिर कुछ ऐसी चीजें करनी है कि हमें अपने पुरुषार्थ में तड़प लेकर आनी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। जगदीश भाई जी को जब नया नया ज्ञान मिला, तो जहां वो नौकरी करते थे वहां से 2 घंटे का ट्रेन का रास्ता था मुरली का। वो ऑफिस से खत्म करते थे अपना काम, ट्रेन लेते थे और फिर आके दिल्ली में आके मुरली सुनते थे, शायद सोनीपत में जॉब करते थे। एक दिन उनकी ट्रेन छूट गई, और उस जमाने में दूसरी ट्रेन भी नहीं थी, तो क्या करें, मालगाड़ी आ रही थी, कोयला ढोने वाली गाड़ी। तो जगदीश भाई ने सोचा इसमें जाते हैं, तो उन्होंने, और उस वक्त उनकी उम्र 25-26 साल रही होगी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे बिठा लो। उन्होंने उसको मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं मुझे अर्जेंट जाना है, मुझे जरूर जाना है, आप प्लीज मुझे बिठाओ। तो उन्होंने सोचा कि आज फ्राइडे है, कोई नई मूवी लगी होगी, इसलिए इसको इतनी जल्दी हो रही है बैठने की। लेकिन फिर भी उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो बिठाया, और फिर जगदीश भाई मालगाड़ी में बैठकर उस दिन मुरली सुनने आए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बांधेलियों के भी बाबा ने बोले हैं कि एक बांधेली भटिंडा की एक कहानी है कि उनको बाहर से कुंडी बंद करते थे, बहुत कॉमन है ना, बाहर से कुंडी बंद कर दी कि नेक्स्ट डे मुरली में जा ही नहीं पाएंगे। तो वो अपने वाइट ड्रेस रेडी करती थी, बाथरूम में टैप ऑन की और फिर खिड़की से कूद कर फिर सेंटर जाती थी, और ब्रह्मा बाबा किसी को भेजते थे भाई को ताकि उनको लेके आ सके। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये तो हमारे ड्रामा की, हमारी जर्नी में ऐसी सिचुएशंस बन गई। लेकिन अगर हम इस स्टेज में हैं जहां हमें कोई विघ्न नहीं है, स्टेबल कंडीशंस है, इस टाइम पे हमें उस तड़प को पैदा करना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आपके पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए, तृप्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर हमारा पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। बाबा ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं कि यही तो टाइम है कर दिखाने का, दिस इज द ओनली टाइम कि बाबा को हम अपनी वर्थ शो कर सकते हैं, बाबा को सहयोग दे सकते हैं, यही वो समय है जब बाबा को हम हेल्प कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज कि ड्रामा में सब कहते हैं ना कि सब कुछ हूबहू रिपीट होता है, कि अब अगर ढंग से कर लिया, अब अगर कर दिखाया, अब अगर अपने सुविधा क्षेत्र को बड़ा कर लिया, तो जो ये रिकॉर्डिंग होगी, ये रिकॉर्डिंग फिर रिपीट होने वाली है, तो फिर बेस्ट रिकॉर्डिंग क्यों ना करें, रिकॉर्डिंग तो फिर अपनी जो पुरुषार्थ की है, हम बेस्ट रिकॉर्डिंग क्यों ना करें। तो इसी के साथ आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।